कशिश जैसे ही उठने को हुई, सीढ़ी गीली होने के कारण उसका पैर फिसल गया और पानी में गिरने के डर से वो जोर से चीख पड़ी, माँ। ईशान के कानों में उसकी चीख पड़ते ही वो अपने ख्यालों से चौंक कर बाहर आया। कशिश को पानी में गिरते देख उसने हड़बड़ाहट में आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, पर खुद उसका भार संभाल नहीं सका। कशिश जैसे ही उससे टकराई, ईशान का संतुलन बिगड़ गया और कशिश को थामे हुए वो घाट की सीढ़ियों पर गिर गया। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग उन्हें देखने लगे थे। देखते ही देखते उनके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ लग गई थी। ईशान और कशिश दोनों घाट की सीढ़ी पर पड़े थे, ईशान नीचे और कशिश उसके ऊपर। जोर से गिरने के कारण ईशान की पीठ में चोट लग गई थी, जिसका दर्द उसके चेहरे पर झलक रहा था और उसके होंठ फींचे हुए थे। उसकी एक बांह कशिश की पतली कमर पर लिपटी हुई थी तो दूसरी ने उसकी कलाई कसके थामी हुई थी। वहीं कशिश की एक बांह ईशान की गिरफ्त में थी तो दूसरी हथेली ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। कशिश इतनी डरी हुई थी कि उसने ईशान के सीने में अपना सिर छुपाया हुआ था। दोनों की सांसें भय और घबराहट से थमसी गई थी और उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। आप दोनों ठीक हैं? एक अनजान सी आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। तब जाकर उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ। कशिश तुरंत उसके ऊपर से हटकर बगल में बैठ गई और सक पकाते हुए हड़बड़ी में अपनी साड़ी को ठीक करने लगी, जो गिरने के कारण अस्त व्यस्त हो गई थी। ईशान को सिर और पीठ में दर्द हो रहा था, पर उसने अपने दर्द को छुपा लिया। आदत थी इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। वो भी उठकर बैठ गया, फिर अपने आसपास मौजूद भीड़ को देखते हुए बोला, शुक्रिया, हम ठीक हैं। इसके बाद सब वहां से चले गए। भीड़ को तितर बितर होते देख ईशान में गहरी सांस छोड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे पर रोष, नाराजगी और नागवारी के भाव उभर आए। उसकी घूरती निगाहें कशिश की ओर घूम गई, जो घबराहट में अपनी साड़ी का आंचल ठीक कर रही थी। वो तंस कसते हुए बोला, तुम्हें डूबने का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं है? अभी अपनी बेवकूफी की वजह से खुद तो गिरी ही, साथ मुझे भी गिराया। कशिश, जिसकी सांसें अब भी अनियंत्रित थीं और गिरने का डर उसके जहन पर हावी था, ईशान की बात सुनकर उसने सर घुमाकर उसे देखा और नाराजगी से मुंह फुलाते हुए बोली, मैं कोई जानबूझकर नहीं कूद रही थी कि आप ऐसे ताने मार रहे हैं। पैर फिसल गया था मेरा और मैंने आपको मुझे बचाने के लिए नहीं कहा था। गिर जाने दिया होता मुझे, क्यों बचाया? ताकि बाद में बचाने का एहसान जताते हुए मुझे ताने मार सके। कशिश की बातें सुनकर ईशान ने पहले तो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे अविश्वास से देखा, फिर अगले ही पल आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, तुम्हारे लिए मुसीबत मोल ली, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ पर मुझे चोट लगी। तुम्हें तो मेरे शुक्रगुजार होना चाहिए, पर तुम तो मुझ पर ही चढ़ी जा रही हो। बड़ी ही मगरूर हो तुम। थैंक यू तो तुम्हारे मुंह से फूटा नहीं, उस पर तुम माफी मांगने और मेरा एहसान मानने की जगह अपना गुरूर दिखा रही हो। नहीं छोड़ देता? जब छोड़ देता ना, और लहरों में हिलोरे मारते हुए खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती, मदद की गुहारे लगाती, तब मालूम पड़ता तुम्हें कि कहना आसान है पर जब वो हो जाए तो क्या होता है। ईशान की बात ठीक थी, पर गलत कशिश भी नहीं थी। ईशान की बात सुनकर कशिश ने मुंह बिचकाते हुए मासूम सी सूरत बना ली, जिस पर किसी पत्थर दिल को भी तरस आ जाए। हाँ तो ठीक है, आपने मुझे गिरने से बचाया, मैं शायद डूब ही जाती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे ताने मारे। किसी की मदद करते हैं तो एहसान जताकर उसे अपमानित नहीं करते, क्या इतना भी नहीं मालूम आपको? कशिश ने मुंह फुलाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और ईशान अब चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर सका। इस प्यारी सी बच्ची पर कोई भला गुस्सा करे भी तो कैसे? ईशान उसकी बात सुनकर कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ध्यान रखा करो अपना, हर बार कोई बचाने वाला मौजूद हो ये जरूरी नहीं। इतना कहकर वो अपने सिर के पिछले हिस्से को अपनी हथेली से सहलाने लगा। कशिश ने उसे ऐसा करते देखा तो बेहिचक आगे बढ़कर अपने नाजुक हाथों से उसके सिर को सहलाते हुए बोली, सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। ये सब इतनी अचानक हुआ कि ईशान चौंक गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कशिश ऐसा कुछ करेगी। ईशान हैरान सा कशिश को देखने लगा, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो रोने वाली है। इस वक्त उनका चेहरा एकदम आमने सामने और एक दूसरे के बेहद करीब था, जिससे कशिश बिल्कुल ही बेखबर थी। पर इन अनचाहे अचानक आई नजदीकियों ने ईशान के दिल में हलचल मचा दी थी। ईशान की निगाहें उसके गुलाबी होंठों पर ठहर गईं, जो कुछ बड़बड़ा रहे थे। कशिश का पूरा ध्यान ईशान के सिर को सहलाने में था, जबकि ईशान की निगाहें आज बड़े ही गौर से उसके चेहरे का मुआयना कर रही थी। कुछ पल कशिश के होंठों, उसकी बड़ी बड़ी काली कजरारी मोटी मोटी आंखों से उसकी निगाहें उलझ गईं, जिसे वो चाहकर भी नजरें ना हटा सका। पर जल्दी ही उसे नजदीकियों का एहसास हुआ। उसने खुद को संभाला और उसके हाथ को पकड़कर उसे खुद से दूर कर दिया। मैं ठीक हूँ, ईशान इतना कहकर तुरंत उठकर खड़ा हो गया और अपने बालों को हाथों से सेट करते हुए बोला, चलो कहीं और चलते हैं। कशिश समझ ही नहीं सकी कि अचानक ईशान को क्या हुआ। उसने नासमझी से सर हिला दिया, फिर उठते हुए परेशान नजरों से उसे देखते हुए सवाल पूछ बैठी, तुम्हें ज्यादा लग गई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता छोड़ो और बताओ कि अब कहाँ जाना चाहोगी तुम? जहाँ भी आप ले चले मैं चली जाऊंगी आपके साथ। बस मुझे आज थोड़ी शॉपिंग भी करनी है तो बाजार ले चलिएगा, और घर लौटने से पहले मुझे रात की गंगा आरती दिखा दीजिएगा। कशिश ने बड़ी ही मोहब्बत से अपनी ख्वाहिश बयां की। ईशान ने पलटकर कशिश को देखा तक नहीं, सर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। घाट से निकलकर ईशान अपनी बाइक पर बैठा तो कशिश उसके कंधों को थामते हुए उसके पीछे आकर बैठ गई। बाइक स्टार्ट हुई और लंका की तरफ बढ़ गई, जहां विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है। कशिश तो बड़ी ही उत्सुकता से अपनी निगाहें घुमाते हुए बनारस की संकरी गलियों, पुराने मकानों, छोटी छोटी दुकानों, चाय की टपरियों, वहां वाद विवाद और बातें करते लोगों, गली में खेलते बच्चों को देख रही थी। पूरे 2 महीने बाद वो खुली हवा में सांस ले रही थी, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बाइक चलाते हुए ईशान की नजर सामने लगे शीशे में उभरती कशिश के प्रतिबिंब पर पड़ गई। हवा में बल खाती उसकी शैतान लटे उसके चांद से सोने मुखड़े को चुनते हुए खिलखिला रही थी। खुशी से खिले उसके चेहरे पर उसके नाम के ही अनुरूप अलग ही कशिश बिखरी हुई थी। उन बड़ी बड़ी आंखों में हीरे सी चमक थी, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल होठों पर सौम्य सी मुस्कान फैली हुई थी। एक पल को ईशान की निगाहें उस पर ठहरी, फिर उसने अपना ध्यान रास्तों पर लगा लिया।